閉めたらいいな。
الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله مولانا العظيم ایک بہت بڑا نام ہے، ہم فضائل اعمال کی تعلیم میں بھی سنتے ہیں، بزرگوں کے بیان میں بھی سنتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کو لوگ خواجہ حسن بصری بھی کہتے ہیں، تابعین میں سے ہیں اور حدیث کے بھی بڑے امام ہیں اور تصوف کے سلسلے میں بھی ان کا نام آتا ہے. بصرہ ایک شہر کا نام ہے، وہاں رہتے تھے. یہ تو بڑے اللہ والے تھے، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے حدیث کے عالم تھے. اس زمانے کے اندر ایک اور خطرناک نام تھا جس کے نام سے لوگ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، وہ نام تھا حجاج ابن یوسف کا. اس کا ظلم بہت مشہور ہے، بڑا ظالم تھا. اس کے ظلم کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس نے صحابہ کرام کو بھی شہید کیا ہے. اب جو آدمی صحابہ کرام پر ہاتھ اٹھائے وہ کتنا خطرناک ظالم ہوگا. کعبہ شریف بھی اس نے جو ہے توڑنے کی کوشش کی، کعبہ شریف کی بھی جو ہے جو ادب ہونا چاہیے وہ نہیں کیا. وہ جہاں جاتا تھا لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. اس لیے ایک مزاج بناؤ اپنا کہ بعض انسان دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے نام سن کر لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے کہ فلاں اچھے آدمی ہماری بستی میں آ رہے ہیں، हमारे घर पर आ रहे, हमारे शहर में आ रहे। अल्लाह करे हमारा नाम और काम दोनों अच्छा हो जाए, कि हमारा काम और नाम सुन के लोग खुश होवे कि अच्छे आदमी है, अच्छे आदमी आ रहे हैं। और कभी ऐसा ना हो कि हमारा नाम और काम सुन के लोग घबरावे, डर जावे कि आदमी तो बड़ा जालिम है, जुल्म करता है। ऐसे हालात से भी अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो एक मर्तबा बसरा के लोगों को खबर हुई कि हज्जाज इब्न यूसुफ आ रहा है, बसरा आ रहा है। तो बसरा के लोग घबरा गए, डर गए, उसका नाम सुन के ही घबरा गए कि इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा खतरनाक आदमी वो बसरा आ रहा है। तो लोग बहुत परेशान थे, क्या करें। बसरा के लोगों ने सोचा कि हमारे शहर में इतने बड़े बुजुर्ग रहते हैं, ताबी रहते हैं, हदीस के इमाम रहते हैं, हजरत ख्वाजा हसन बसरी का, उनके पास जाएंगे और मशवरा लेते हैं कि हजरत हम क्या करें। इसलिए कि जालिम आदमी आ रहा है, बड़ा खतरनाक जुल्म वाला आदमी आ रहा है। तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी के पास जावे और हजरत से मशवरा ले गए कि हम क्या करें। ये एक अच्छा मिजाज है, अच्छी आदत है कि आदमी अल्लाह के नेक बंदों से मशवरा लेकर के चले, अच्छा मिजाज है। हदीस शरीफ में आता है कि जो मशवरा करके काम करता है वो कभी नुकसान में नहीं पड़ता। मा खाब मन इस्तशारा। इसीलिए हमें किसी भी अल्लाह वाले के साथ, किसी आलिम के साथ, किसी नेक आदमी के साथ ऐसा ताल्लुक होना चाहिए कि हम उनके मशवरे से काम करें, उसमें बड़ा फायदा होता है। बहुत साल पहले की बात है, कम से कम 35-34 साल हुए होंगे। वापी करके एक शहर है, वहाँ बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था। हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे, हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। तो वहाँ उलमा की एक खुसूसी मजलिस थी, तो हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब को कौन नहीं जानता। आलम में अल्लाह ने उनके बयानात को, उनकी फिक्रों को, उनकी मेहनत को चमकाया। लिसानुद्दावती व तबलीग उनको कहते थे। तो उलमा के बयान में हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब बात फरमाई थी कि मैं अपने हर काम में, घरेलू काम में भी हजरत जी दामत बरकात हम से मशवरा करके करता हूं, और उस मशवरे की बरकत से हमेशा मुझे दुनिया में भलाई नजर आई। हालांकि मौलाना मोहम्मद उमर साहब इतनी बड़ी शख्सियत, लेकिन फरमाया कि मैं मशवरे से चलता हूं और अल्लाह ने मुझे इस मशवरे में बड़ी बरकत अता फरमाई। तलबा को, उलमा को भी ये मिजाज बनाना चाहिए, अपने असातिज़ा, अपने बड़ों से मशवरा करके काम करे। मुसलमानों को भी मिजाज बनाना चाहिए, किसी अल्लाह वाले से मशवरा करे और मशवरे से चलने वाले बने। तो बसरा के लोगों ने सोचा कि इतना बड़ा जालिम आ रहा है तो हम हजरत हसन बसरी से मशवरा करें। गए हजरत के दरवाजे पर, हजरत मशवरा करने आए। हज्जाज इब्ने यूसुफ जैसा जालिम हमारे शहर में आ रहा है, हमारी राय ये है कि हम शहर से बाहर निकले और निकल करके हज्जाज के साथ लड़ाई करें और हज्जाज को हम कत्ल कर दें। ये हमारी राय बन रही है। तो हजरत ख्वाजा हसन बसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अजीब बात फरमाई है, देखो अल्लाह वालों की नजर कहाँ होती है। फरमाने लगे कि एक हज्जाज को कत्ल करोगे तो तुम्हारा कोई मसला हल होने वाला नहीं है। अल्लाह के खजाने के अंदर, खुदा के लश्कर में और भी बहुत सारे हज्जाज है, खुदा के यहां और भी बहुत सारे हज्जाज है, एक हज्जाज को कत्ल करोगे तुम्हारा मसला हल नहीं होगा। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह का लश्कर अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। एक जालिम हज्जाज को मारने से, एक जालिम हज्जाज को कत्ल करने से तुम्हारा कोई मसला हल होने वाला नहीं है। तो कहा हजरत फिर क्या करें? कहा मैं तुमको तीन काम बतलाता हूं। हजरत हसन बसरी ने उनको तीन काम बतलाए। ये तीन काम आज के हालात में भी मुसलमान कर ले तो अल्लाह बड़े से बड़े जालिमों के जुल्म से हमें नजात और छुटकारा अता फरमाएंगे। जो तीन बातें हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने उस जमाने के अंदर बतलाई थी, आज भी उस पर अमल की बहुत जरूरत है। पहली बात, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई, ए मेरे बसरा के लोगों, जिन्होंने दूसरों का माल दौलत गसब कर लिया हो, गलत तरीके से ले लिया हो, तो उसके मालिकों को वापस लौटा दो। जिसने भी दूसरे का माल गसब किया हो, गलत तरीके से लिया हो, मालिकों को वापस करो, लौटा दो। और मालिक न मिले तो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर गरीबों को सदका कर डालो। मालिक न मिले तो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर सदका कर डालो। ये बड़ी जबरदस्त नसीहत फरमाई। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ए ईमान वालो, ना हक तरीके से, गलत तरीके से किसी का माल मत खाओ। साफ हुक्म दिया अल्लाह ने, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ना हक तरीके से, गलत तरीके से किसी का माल मत खाओ। आज हमारे लिए भी ये जरूरी है। 50 साल पहले, 40 साल पहले किसी को धोखा देकर, झूठ बोलकर, बनावट करके अगर किसी का माल दौलत खा लिया हो, याद करके वापिस करो, लौटाओ, इसमें हमारी भलाई है। एक हदीस में मेरे और आपके प्यारे आका ताजदार मदीना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आदमी ने दूसरे आदमी की एक बालिश्त जमीन ले ली गलत तरीके से। बालिश्त इसको कहते हैं, गुजराती में वैत कहते हैं, वैत। इतनी जमीन किसी की गलत तरीके से ले ली तो इतनी जमीन सात जमीन तक, इतनी जमीन सात जमीन तक कयामत के दिन गले में हार बना करके अल्लाह डालेंगे। अब इतनी जमीन 10 फुट तक खोद के देखो कितना वजन होता है, और उसको गले में लटका के देखो गर्दन टूट जाएगी। खाली 10 फुट खोद के मिट्टी निकालो। हदीस में इरशाद फरमाया, एक बालिश, एक वैत जमीन किसी की गलत तरीके से ले ली تو سات زمین تک کھود کر کے قیامت کے میدان میں اس کے گلے میں ہار بنا کے ڈالا جائے گا. بہت بڑی بات ہے. کسی کا مال, کسی کی دولت, کسی کا روپیہ, کسی کی زمین, کسی کا مکان, کسی کی جائیداد, کسی کی پراپرٹی غلط طریقے سے لے لی ہو, واپس کرو, یاد کر کر کے واپس کرو. خدا کا اعلان ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. غلط طریقے سے, ناحق طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ. دینی بھائیوں, ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو الگ الگ حدیث, کہ میری پیدائش بھی پیر کے دن ہوئی. حضور کی پیدائش سوموار کو, حضور پر اللہ کے یہاں سے قرآن اترنا چالو ہوا وہ بھی پیر کو, اور حضور کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی. تینوں چیز پیر کے دن ہوئی, سوموار کو. اسی لیے حضور پیر کو روزہ بہت رکھتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ پیر کو روزہ رکھتے ہو, تو ارشاد فرمایا کہ پیر کو میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ وہ میری پیدائش کا دن ہے, میرے اوپر قرآن اترنے کا دن ہے, میری مفات کا دن ہے, میری موت بھی اس دن ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے, زندگی کی آخری بیماری, اور اس بیماری کے اندر کمزوری آ گئی, بہت کمزوری, چکر آتے تھے, یہ آدھا سر دکھتا تھا, درد شقیقہ اس کو کہتے ہیں اردو میں, آدھا سیسی, بہت دکھاوا ہوتا تھا. کچھ نمازیں گھر میں پڑھی, اتنی طبیعت خراب تھی. لیکن ایک دن آخری بیماری میں, انتقال سے کچھ وقت پہلے, طبیعت میں کچھ ہوش آیا, فرمایا کہ لاؤ مجھے وضو کراؤ, پانی لاؤ. ہمت کر کے وضو کرایا, پھر بے ہوش ہو گئے. دو تین مرتبہ ایسا ہوا, کمزوری اتنی تھی, بے ہوشی آ جاتی تھی. پھر کچھ ہوش آیا تو سر پہ پٹی باندھی, چونکہ سر میں دکھاوا ہو رہا تھا, کپڑے کی پٹی فٹ باندھی, اور پھر چل نہیں پا رہے تھے تو دو آدمی کے سہارے سے, جیسے ہم چلتے ہیں, دو آدمی کے ٹیک لگا کے, بیمار آدمی, دو آدمی کو ٹیک لگا کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, کہا لوگوں کو جمع کرو. مسجد بھر گئی, چکار, ممبر پر تشریف لائے. آخری دنوں کی بات کر رہا ہوں. ممبر پر آ کر کے ارشاد فرمایا, ہے لوگوں, تم سے میں سوال کرتا ہوں, تم میں سے کسی کا کوئی حق میرے اوپر باقی ہو, آؤ اپنے نبی سے وصول کر لو. میں اعلان کرتا ہوں, بالکل آخری وقت میں, حالانکہ دنیا جانتی ہے, میرے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا حق نہیں دبایا, کسی کا حق نہیں لیا, کسی کا غلط مال نہیں لیا, لیکن پھر بھی دیکھیے فکر کتنی ہے. آخری وقت میں ممبر پر تشریف لائے, چکر آ رہے تھے, سر دکھ رہا تھا, پٹی باندھ کے آئے, چلنا مشکل تھا, دو آدمی کو سہارے سے آئے, کہ مجمع جمع کرو, کسی کا بھی کوئی حق ہو میرے اوپر وصول کر لے مجھ سے. اعلان کیا. اب کس کا حق باقی ہوتا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا, حضور تین درہم باقی ہے. وہ کہا اچھا, ابھی میں دلوا دیتا ہوں, لیکن میں صرف پوچھتا ہوں کہ کب کے تین درہم باقی ہے, جاننے کے لیے پوچھتا ہوں. تو اس آدمی نے کیا کہا کہ ایک مرتبہ کوئی غریب آدمی آیا تھا آپ کے پاس صدقہ لینے, اور آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, تو آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ اس کو کچھ دے دو, تو وہ تین درہم باقی ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں, का कोई गरीब आया था, मोहताज आया था आपके पास लेने के लिए, आपके पास कुछ नहीं था, तो आपने मुझे कहा था इनको देने के लिए कुछ दे दो, तो दे दिए थे, वो 3 दिरहम बाकी है। सुभान अल्लाह, पूरे मजमे में ऐलान, किसी का कोई हक बाकी हो तो आके वसूल करो। क्या मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ सुथरी प्यारी जिंदगी होगी। मस्जिद में ऐलान हो गया, फिर फरमाए कि औरतों को जमा करो, मदीना की औरतों को लाओ। मदीना की औरतों को जमा किया और फिर औरतों में जाके भी ऐलान फरमाया, बीमारी में, तकलीफ में, कमजोरी में, बेहोश हो रहे थे, औरतों में भी ऐलान फरमाया कि अगर किसी का कोई हक मेरे ऊपर बाकी हो आकर के वसूल कर लो। ये है मेरे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, ये हुजूर की जिंदगी। किसी का हक नहीं रेवे मेरे जिम्मे में बाकी, और उसके कुछ कलाकों के बाद, कुछ घंटे के बाद हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए। आखिरी सांस की बात भी सुन लो, बिल्कुल आखिरी वक्त आका का। और मां ईशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के रूम में थे, मां ईशा बैठी हुई है और आका यहां टेक लगा के बैठे हुए हैं। हजरत आयशा को यहां टेक लगाया था हुजूर ने। कितनी प्यारी जिंदगी बीवी के साथ गुजार के दिखाई, आखिरी वक्त यहां टेक लगाया हुआ है। और हुजूर को कमजोरी इतनी है, कोई बात बोल नहीं पाते थे। इतने में हजरत आयशा के भाई आए, हजरत अब्दुल रहमान इब्न अबी बकर, उनके हाथ में ताजी मिसवाक थी। तो हुजूर देख रहे थे, हजरत आयशा समझ गए कि मिसवाक का इरादा है, तो भाई के पास मिसवाक ली मां आयशा ने, लाओ भाई। फिर मां आयशा ने चबाई, चूंकि हुजूर कमजोर थे चबा नहीं सकते थे, ताजी मिसवाक थी एकदम ताजी, तो मां आयशा ने चबाई, चबा के नरम की उसको, सॉफ्ट की, और फिर हुजूर को दी मिसवाक। और हुजूर ने वो मिसवाक अपने दांत मुबारक पर लगाई। दुनिया की कोई आखिरी चीज हुजूर के मुंह में गई तो पाक बीवी हजरत आयशा का थूक गया हुजूर के मुंह में। क्या मोहब्बत होगी मियां बीवी में। और आखिरी सुन्नत तो मिसवाक की सुन्नत, उसके बाद कोई अमल नहीं किया, इंतकाल हो गया। आखिरी सुन्नत मिसवाक, हजरत आयशा ने नरम की लकड़ी दांत से चबाकर और हुजूर को दी। हुजूर ने वो मिसवाक मुंह में लगाई और थोड़ी देर के अंदर कहा, अल्लाहुम्मा फिर रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा फिर रफीकिल आला। ऊपर देखा आसमान की तरफ और रूह मुबारक चली गई। इस किस्से को नकल करके शारह मिश्कात मुल्ला अली खारी रहमतुल्ला अली नकल करते हैं कि जो आदमी मिसवाक की सुन्नत जिंदा करेगा अल्लाह उसको मौत के वक्त कलमा नसीब करेंगे। चाहते हो ना मौत हो के वक्त कलमा, मिसवाक वाली सुन्नत जिंदा करो, मौत के वक्त कलमा नसीब होगा। ये अल्लाह के नबी की आखिरी सुन्नत है, अमली सुन्नत। जो भी इस सुन्नत को अपनाएगा अल्लाह मौत के वक्त पर कलमा नसीब करेंगे। हर एक को फिक्र है मौत ईमान पर आए, सबको फिक्र है, नबी को भी फिक्र है, वली को भी फिक्र है, हाजी को भी फिक्र है, काजी को भी, सबको मौत ईमान पर आए। अल्लाह मुझे और आपको ईमान पर मौत अता फरमाए। सुन्नत मिसवाक वाली जिंदा करो। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बसरा वालों को बहुत अच्छा मशवरा दिया, बहुत अच्छा मशवरा, कि हज्जाज जैसा जालिम आ रहा है उसको कत्ल करोगे तो क्या होगा, एक को कत्ल करने से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। खुदा के यहां पता नहीं कितने हज्जाज जैसे जालिम है, एक जावे दूसरा आवे। कत्ल करने से कोई मसला हल नहीं होगा। मैं तीन काम बतलाता हूं, वो करो। पहला काम ये बतलाया कि जिस किसी का माल, जिसकी दौलत तुमने गलत तरीके से ले ली हो, उसको रिटर्न करो, वापिस करो, लौटाओ। और वो आदमी ना मिले तो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर के सदका कर दो। अल्लाह हमें ऐसा बनावे। लेवड़ देवड़ में, मामलात में, वहां इंसान के ईमान का पता चलता है कितना ईमान है। ईमान वहां थर्मोमीटर वहां लगता है, मामलात में, लेवड़ देवड़ में। इबादत बहुत आसान, तस्बीहात बहुत आसान, मामलात असल चीज। आपको मालूम है कुरान में 6000 से ज्यादा आयत है, लेकिन सबसे बड़ी आयत साइज में सबसे बड़ी आयत वो मामलात और लेवड़ देवड़ के बारे में है, जिसको आयत मुदायना कहते हैं, सूरह बकरा के अंदर है। या अय्युहल्लदीना आमनु इज़ा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबू। ये लेवड़ देवड़ की आयत है कुरान में, सबसे बड़ी आयत कुरान की वो मामलात की है, लेवड़ देवड़ की है। अंदाजा लगाओ कि मामलात और लेन देन साफ रखना हमारी शरीयत में कितना जरूरी होगा। हमारे मदरसों में किताब पढ़ाते हैं इस्लामिक लॉ, इस्लामिक कायदा शास्त्र, उसका नाम है हिदायत। ये इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है और कोर्टों में भी होती है किताब, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में है ये किताब। जज लोग कोई मुसलमान का मामला आता है तो उसको देखते हैं रेफरेंस के तौर पर। हिदायत, इस्लामिक कायदा शास्त्र, इस्लामिक लॉ, वो 4 जिल्दों में है। पहले पार्ट में, जिल मतलब पार्ट, वॉल्यूम, भाग। एक भाग में इबादत है, दूसरे भाग के अंदर माशरत है, निकाह तलाक, और तीसरा और चौथा दो पार्ट मामलात के बारे में है। इससे अंदाजा लगाओ कि शरीयत में मामलात कितने इंपॉर्टेंट होंगे। इबादत का एक ही वॉल्यूम, एक ही हिस्सा, माशरत का, समाजी जिंदगी का एक, और मामलात के बारे में दो दो पार्ट है उसके। अंदाजा लगाओ शरीयत में मामलात कितने इंपॉर्टेंट है। वहां इंसान के ईमान का इम्तिहान होता है। हमारे एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि इबादत वाले इस्लाम पर अमल करने के लिए 500 ग्राम ईमान चाहिए और मामलात वाले ईमान पर अमल करने के लिए 5 किलो ईमान चाहिए। 500 ग्राम ईमान होगा तो इबादत वाला इस्लाम चलेगा अपना, लेकिन मामलात वाले इस्लाम पर अमल करने के लिए 5 किलो ईमान चाहिए, पावरफुल ईमान। वहां इंसान के ईमान का पता चलता है। मामलात में एकदम साफ, लेवड़ देवड़ में साफ, जो नबी का तरीका मैंने आपको सुनाया। तो पहली नसीहत फरमाई, ए मेरे बसरा के लोगों, जिस किसी के पास दूसरे का माल हो गलत तरीके से, रिटर्न करो, वापिस करो। इसीलिए कि जब तक गलत माल होगा तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाते, रिजेक्ट। हम कहते हैं ना अर्जी रिजेक्ट थी गई, तो अल्लाह के यहां दुआ रिजेक्ट हो जाती है। हराम माल होता है तो दुआ रद्द हो जाती है। तफसीर इमदादी ने लिखा है कि हजरत मूसा अला नबीना वाले ही सलात व सलाम कहीं जा रहे थे और एक बंदे को देखा दुआ मांग रहा है। नबी ने देखा मूसा अलैहि सलाम कहीं गए काम पता के वापिस आए, वो आदमी अभी भी दुआ में बैठा हुआ है। तो मूसा अलैहि सलाम को रहम आ गया, तो मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह को अर्ज किया, नबी थे, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था वही के जरिए, अल्लाह आपके इस बंदे की दुआ कबूल कर लो, बेचारा कब से दुआ मांग रहा है, कबूल कर लो। अल्लाह के यहां से जवाब आया कि मूसा इसने हाथ यहां तक उठाए, अगर वो आसमान तक भी उठावे हम उसकी दुआ कबूल नहीं करेंगे। आसमान तक हाथ उठावे हम उसकी दुआ कबूल नहीं करेंगे जब तक उसके माल में से हराम माल अलग न हो जावे।
جب تک حرام مال ہے آسمان پر اس کے ہاتھ آ جاوے ہم اس کی دعا قبول نہیں کریں گے.
تو موسیٰ علیہ السلام گئے اس کے پاس, نبی تھے, حساب کتاب جو کرنا ہوگا کیا ہوگا. تو اس کے مال میں 4 دینار حرام کے نکلے. دینار کرنسی ہوتی تھی وہ زمانے میں, 4 دینار. وہ 4 دینار الگ کروا کے 77 کروا دیا ہوگا. جب 4 دینار حرام کے الگ کرائے, اللہ کے یہاں سے وحی آئی, موسیٰ ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. میرے بھائیو اس کو معمولی مت سمجھو, ہم بہت دعا کر رہے ہیں. اللہم قاتل الکفرۃ والیہود والنصارۃ والمشرکین, پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. جب تک حرام ہوگا مال میں, کپڑے میں, کھانے میں, پینے میں, استعمال میں, مکان میں, گاڑی میں, دعا قبول نہیں ہوگی اللہ کے یہاں, اس کو الگ کرنا پڑے گا. دوسری بات, حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بصرہ والوں کو فرمائی, میرے بصرہ کے رہنے والوں, میرے شہر کے رہنے والوں, جس کسی کے گھر میں حرام عورت ہو وہ الگ کر دے, جس کے کانٹیکٹ میں, جس کے سبند میں حرام عورت ہے, پارکی عورت ہے, پرائی عورت ہے, وہ اس کو الگ کر دے. ہے نا, آج یہی ہو رہا ہے, زنا, پرائی عورت یعنی زنا, کانٹیکٹ, سبند پرائی عورت سے, بغیر نکاح کے, بغیر شادی کے, ایسے ہی کہا اس کو الگ کرو اور توبہ کرو, سبند کاٹ دو اور توبہ کرو اللہ کے سامنے. یہ حضرت حسن بصری نے دوسری نصیحت فرمائی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, سورۃ المؤمنین میں کامیاب ایمان والوں کی نشانی بتلائی, والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. باری تعالیٰ فرما دے, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, جو اپنی شرم کی جگہ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, قابو میں رکھتے ہیں, یعنی زنا نہیں کرتے, حرام کام نہیں کرتے, اللہ کے کامیاب بندے, پکے ایمان والے بندے, جو اپنی شرم کی جگہ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, زنا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. والذینہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, بیوی حلال, باندی حلال, یہ زمانے میں باندی ہے ہی نہیں, داس داسی پرتھا ہے ہی نہیں, بیوی حلال. اللہ آگے اللہ فرماتے ہیں, فَمَنِ بَتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. بیوی اور باندی کے علاوہ کوئی غلط جگہ تم جاؤ گے تو تم شریعت کی بارڈر کو کراس کرنے والے کہے جاؤ گے. شریعت کی بارڈر کراس کر دی, حرام میں پڑ گئے. اور یاد رکھو, جب کسی قوم میں زنا زیادہ ہوتا ہے اللہ خطرناک بیماریاں بھیجتے ہیں, ڈینجر بیماریاں. اور شیطان ہے نا, بہت چالاک ہے, بہت چالاک ہے شیطان. الگ الگ ٹائٹل سے زنا کرواتا ہے. کسی کو کہے گا گرل فرینڈ رکھ لو, کتنا اچھا ٹائٹل دیا شیطان نے گرل فرینڈ کا, ہمارے نوجوانوں کو چکر میں ڈالتا ہے. یہ زینا کا دروازہ ہے, شیطان ڈیکوریٹ کر کے زینا کا دروازہ دکھاتا ہے. لڑکیوں کو کہے گا بوائے فرینڈ رکھو, لڑکوں کو کہے گا گرل فرینڈ رکھو. اور یہ زینا کا دروازہ شیطان کھلواتا ہے. یہ شیطان ہے جو شاندار ٹائٹل سے غلط کام کرواتا ہے. शानदार टाइटल से। बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनना। बुखारी शरीफ की एक हदीस में है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे दो चीजों की गारंटी दो, मैं तुमको जन्नत की गारंटी देता हूं। दो चीज की गारंटी दो कि मिस यूज नहीं करेंगे, गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं तुमको जन्नत की गारंटी देता हूं। का पहली चीज जो तुम्हारे दो जबड़े के बीच में है, यानी जुबान, जबान को गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। और दूसरी चीज जो तुम्हारी दो टांग के बीच में है, शर्म की जगह, उसको गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। प्यारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको जन्नत की गारंटी देता हूं। जबान की शर्मगा की हिफाजत कर लो, बड़ी खतरनाक चीज है। तो हजरत हसन बसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिसके पास पराई औरत हो, बगैर निकाह की औरत हो, अलग करो, तोबा करो। ये दूसरा काम बतलाया। और तीसरा काम हजरत ने ये बतलाया कि मस्जिदों में बैठकर किबले की तरफ मुंह करके कुरान की तिलावत करो। मस्जिद में बैठो, किबले की तरफ मुंह करके कुरान की तिलावत करो, जब तक ये बला दूर हो जावे, आफत दूर हो जावे। कुरान बहुत बड़ी ताकत वाली चीज है, बहुत बड़ी रहमत वाली चीज है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये ईमान वालों के लिए शिफा भी है, रहमत भी है। रहमत आएगी, बला दूर भागेगी। रहमत आएगी, मुसीबत दूर जाएगी। रहमत आएगी, तकलीफें दूर होगी। कुरान में रहमत है, रहमत। कुरान रहमत है। पढ़ो कुरान, तिलावत करो कुरान का। मस्जिदों में बैठो, किबले की तरफ मुंह करो, तिलावत करो। ये तीन काम बतलाए हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने। पहला काम, जिस किसी के पास भी पराया माल हो, गलत माल हो, रिटर्न करो। दूसरा काम, पराई औरत हो बगैर निकाह की, उसको अलग करो। तीसरा काम, मस्जिद में बैठो और कुरान की तिलावत करो, किबले की तरफ मुंह करके। ये तीनों नसीहत की। गए बसरा वाले, अच्छे लोग, अमल करना शुरू कर दिया। तीनों काम पर अमल शुरू कर दिया। और ईमान वाले की शान यही होनी चाहिए, अमल करे। अमल, मोमिन अमल करने वाला होता है। कुरान में मोमिन की खूबी अल्लाह ने बयान की, समिअना व अताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। ए अल्लाह, आपकी बात सुनी, हम मानेंगे, अमल करेंगे। मोमिन ऐसा ही होता है, सुने अमल करें। ये उम्मत मोहम्मदिया की खूबी है, आखिरी नबी की, आखिरी उम्मत की खूबी। समिअना व अताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। ए अल्लाह, हमने सुना, अमल करेंगे। कुछ भूल चूक कमी कोताही रहे तो अल्लाह माफ कर देना। और बनू इसराइल और पिछले लोग क्या कहते थे, समिअना व अताना, हमने सुना, अमल नहीं करेंगे। ये पिछली उम्मत के लोग थे, इसीलिए उन पर अल्लाह का अजाब आया। सुना, अमल नहीं करेंगे, तो अल्लाह ने उनको अजाब में पकड़ा। हम उम्मत मोहम्मदिया के लोग हैं, समिअना व अताना, अल्लाह हमने सुना, अमल करेंगे। तो बसरा वालों ने अमल चालू कर दिया। तीनों बात पर अमल शुरू। मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करेंगे, इंशाल्लाह हम भी अमल करेंगे तीनों बात पर। पूरी जिंदगी याद करो, जरा मेमोरी को जरा एक्टिव करो, याद शक्ति को जरा हिलाओ कि कभी किसी का माल गलत तरीके से तो नहीं लिया, किसी का माल दबाया तो नहीं, किसी का हक तो नहीं दबाया। याद करो, और याद कर करके हक अदा करो जा करके। और अगर किसी गलत औरत से, पराई औरत से संबंध है, खत्म करो और कुरान की तिलावत शुरू करो।
ये तीन काम बसरा वालों ने किए। थोड़े दिन में खबर आई कि हज्जाज इब्ने यूसुफ दूसरी तरफ चला गया, अब वो बसरा नहीं आएगा, अब वो बसरा नहीं आएगा। जालिम का जुल्म खत्म हो गया, आने से पहले ही खत्म हो गया जुल्म। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात फरमाई वो दिल पे लिखने के लायक फरमाई। पहली बात तो फरमाई, मुझे यकीन था कि ऐसा ही होने वाला है, मुझे यकीन था कि ऐसा ही होगा, वो जालिम नहीं आएगा। और दूसरी बात फरमाई कि ये तो तुमने अमल किया, जो इंसान भी इन तीन बातों पर अमल करेगा, जो इंसान भी इन तीन बात पर अमल करेगा, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करेंगे और उसकी परेशानी और तकलीफ को अल्लाह दूर फरमा देंगे। जो इंसान भी इन तीन बात पर अमल करेगा, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करेंगे और उसकी परेशानी बला मुसीबत आफत को अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, हालात है, नाजुक है, बहुत कुछ है, लेकिन हम भी तो कुछ लाइन पर आवे, हम भी तो सीधे रास्ते पर आवे। ये तीन बात एक अल्लाह के वली की फरमाई हुई, वलियों के इमाम, इमामुल औलिया, इमामुल मुहद्दिसीन, और वो भी कुरान हदीस की रोशनी में फरमाई हुई बात। उम्मत अगर इस जमाने में इन तीन बातों पर आ जावे, हराम माल कमाना नहीं, हराम माल किसी का लेना नहीं, पराए का माल खाना नहीं, फिर देखो अल्लाह दुआएं कैसे कबूल करते हैं। और गलत औरत नहीं, हराम औरत नहीं, और कुरान से हमारा सबन और ताल्लुक, ये तीन सिफात पर उम्मत आ जावे। तो हजरत हसन बसरी ने फरमाया, जो भी इन तीन बातों पर अमल करेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करेंगे और उसके ऊपर आने वाली बला मुसीबत को अल्लाह दूर फरमा देंगे। बड़ी बात है, अल्लाह उम्मत की इज्तिमाई इनफिरादी तकलीफों को अपने करम से दूर फरमाए, बलाओं को दूर फरमाए, जुल्म मजालिम को खत्म फरमाए, और अल्लाह हमें भी इन तीनों बातों पर अमल की दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। भाइयों, हुकूक का मामला बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक। अल्लाह तो गफूर और रहीम है, कुछ नमाज में इधर उधर हुआ तो गफूर और रहीम माफ कर देंगे। कितनी आसानी रखी कि एक आदमी का कयामत के दिन हिसाब होगा और फर्ज नमाज में कुछ कमी निकली तो अल्लाह ताला इतने मेहरबान है कि नफिल नमाज में से लेकर फर्ज नमाज का हिसाब सरभर कर देंगे, बराबर बराबर कर देंगे। इतने मेहरबान है, ये हदीस है कि फर्ज नमाज में कुछ कमी कोताही निकली हिसाब में तो नफिल नमाज में से लेकर हिसाब अल्लाह सरभर बराबर कर देंगे। लेकिन बंदों के हक दबाए, किसी का माल दबाया, किसी का हक ले लिया, माल गलत तरीके से लिया, तो उसका मामला अल्लाह के यहां बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक है। इसमें साफ सुथरे रहो, इसकी बहुत जरूरत है। और इफ्फत और पाक दामनी, हया शर्फ, कि इस इंसान का कैरेक्टर एकदम पाक साफ हो। अल्लाह ने फरमाया ने, ईमान वाले जो कामयाब होंगे, कद अफलाहल मुमिनून, जो ईमान वाले कामयाब होंगे, उसमें एक बात ये फरमाई कि जो अपनी शर्म की जगह को कंट्रोल में रखते हैं, गलत जगह से अपने आप को बचाते हैं। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बात मुकम्मल करते हुए एक हदीस सुनाना चाहता हूं। आप में से कौन चाहता है कि मरने के बाद डायरेक्ट सलामती में से जन्नत में जावे? कौन चाहता है, हाथ उठा। माशाल्लाह, सब चाहते हैं कि मौत के बाद डायरेक्ट सलामती से जन्नत में जावे। तो एक हदीस पर अमल का वादा कर लो, करोगे अमल? हदीस शरीफ में आता है कि जो मुसलमान, बहुत ध्यान से सुनो हदीस, बहुत छोटी सी है, जो मुसलमान हर फर्ज नमाज के बाद
ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے اللہ اس کو مرنے کے بعد سلامتی سے جنت میں بھیج دیں گے. امام شوق نیموی رحمت اللہ علیہ نے آثار السنن میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے کہ جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ کیا پڑھنا ہے, آیت الکرسی. آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. ایک مرتبہ پڑھنا ہے, کب پڑھو گے؟ ہر فرض نماز کے بعد. اور دوسرے فائدہ سناؤ, حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نماز کے بعد پڑھا تو دوسری نماز تک اللہ اس کی حفاظت کریں گے. جمعہ کے بعد پڑھا تو عصر تک اللہ کی حفاظت میں, عصر کے بعد پڑھو تو مغرب تک اللہ کی حفاظت میں. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں کہ رات کو بستر پر بیٹھ کر کے بھی آیت الکرسی پڑھ لو تو اللہ فرشتہ بھیجیں گے جو پوری رات اس کے مکان کی حفاظت کرے گا, بخاری شریف میں ہے. اسی لیے روز کم سے کم 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لو, پڑھو گے اور جنت میں اکیلے جاؤ گے, گھر والوں کو بھی لے جانا ہے. تو گھر والوں کو لے جانا ہے تو آج تبلیغ کرو, نماز کے بعد جمعہ پڑھ کے گھر جاؤ تو گھر والوں کو پہلے سلام کر کے آج یہ حدیث سنا دینا تاکہ وہ بھی عمل کرے اور وہ بھی جنت میں آوے. کرو گے حدیث گھر والوں کو تعلیم؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.